अध्याय 18 अवहट्ट काव्य। सौसेनीय भ्रंश का परवर्ती रूप अवहट्ट के नाम से अभिहित होता है। अवहट्ट शब्द में कोई ऐसा संकेत नहीं जिसके आधार पर हम उसे सौरसेनी का परवर्ती रूप माने, क्योंकि संस्कृत प्राकृत या अभ्रंश वांग्मय में जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ अभ्रंशी है। जतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता के प्रयोगों के और पहले से इस शब्द का उल्लेख मिलता है। 12वीं शती के अद्धहणमाण ने अपने संदेश शासक में भाषात्रयी और उनके लेखकों को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है, अवहट्टय शक्कय पंयमी पिंसायमी भाषाए लक्षण छंदा हरेण सुकैतम भुषयम जेहि ताउण उणु कैण अम्हारिषाण सुई सद्दत्थ रहियाज लख छंद प्रमुख कवितम को पंसेसी। अद्धहमाण ने भी संस्कृत प्राकृत के साथ अवहट्ट का नाम लिया है। जितेश्वर ठाकुर विद्यापति ने संस्कृत प्राकृत के बाद ही इस शब्द का उल्लेख किया है। संस्कृत प्राकृत के बाद अभ्रंश शब्द का प्रयोग संस्कृत अलंकारियों ने एकाधिक बार किया है। षट भाषा प्रसंग में संस्कृत प्राकृत के बाद अभ्रंश की गणना का नियम था। मंक कवि ने के श्रीकंठचरित की टीका से पता चलता है कि 6 भाषाओं में संस्कृत प्राकृत सौरसेनी मागधी पैशाची देशी की गणना होती थी। पहला, पुन कैसन भाट संस्कृत प्राकृत अवहट्ट पैशाची सौरसेनी मागधी हछु भाषा का तत्संज्ञ सकार्य आभारी चंडाली सावली द्रावली औतकली विजातिया सातहों भाषाक कुशलह वर्ण रत्नाकर 55 ख डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र द्वारा संपादित कलकत्ता 1940 ईस्वी। दूसरा, शक्कय वाणो बहुवन भावई पावो रस को मम न पावई देवशील बाना सबजन मिठा तह तई संजम पौ अवहट्ठा कीर्तिलता। संस्कृतम प्राकृतम चैव सूरसेनी तद्भवा ततोऽपि मागधी प्राग्वत पैशाची देशा च अपि च। 9वीं शती के संस्कृत आचार्य रुद्रट ने काव्य अलंकार में 6 भाषाओं के प्रसंग में अभ्रंश का नाम दिया है। प्राकृतम संस्कृतम मागध पिशाच भाषाश्च सौरसेनी च षटोत्र भूरिभेदो देश विषेपाद अभ्रंश काव्यालंकार। ऊपर के श्लोक की 6 भाषाएं वही है जो जेतेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में गिनाई है। इसे स्पष्ट है कि अभ्रंश और अवहट्ट दोनों का सर्वत्र समानार्थी प्रयोग हुआ है। अद्धहमाण और विद्यापति ने भी अवहट्ट का प्रयोग सर्वत्र अभ्रंश के लिए ही किया है। संस्कृत प्राकृत अभ्रंश की यह भाषात्रयी भी व्याकरणों और अलंकारियों द्वारा बहुत चर्चित रही है। इन तीनों प्रयोगों से भिन्न प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर ने अवहट्ट को प्राकृत पैंगलम की भाषा कहा। प्राकृत पैंगलम के प्राकृत शब्द से इस ग्रंथ का संकलनकर्ता या लेखक 13वीं शती के आरंभ में इस पिंगल शास्त्र ग्रंथ के संपादन के समय संभवतः अवहट्ठ का अर्थबोध करना नहीं चाहता था। उसके लिए इस ग्रंथ की भाषा प्राकृत थी, किंतु परवर्ती काल में इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का टीकाकार वंशीधर इसकी भाषा को प्राकृत न कहकर अवहट्ठ कहता है। प्राकृत पैंगलम की पहली गाथा को टीकाकार ने लिखा है, पढ़म भास तरंडो राओ सो पिंगला जाई। टीका, प्रथमा भाषा तरंड प्रथमम आद्या भाषा अवहट्ट भाषा यथा भाषया अयम ग्रंथोर्चित सा अवहट्ट भाषा तस्या इत्यर्थ त अप्तप पारम प्राप्नोति तथा पिंगलम प्रणीत छंद्र शास्त्र प्राय अवहट्ट भाषा ऋचिते तद्ग्रंथम पारम प्राप्तनो अपि भवति भा सो पिंगल णाओ जाय उत्कर्षेण वर्तते प्राकृत पैंगल प्रसंख्याति। ग्रंथ का लेखक आरंभ में भाषा को तरंड यानी नौका कहकर उसकी वंदना करता है और बाद में छंद शास्त्र के आद्याचार्य नाग पिंगल की जयकार करता है। वंशीधर ने संभवतः पढ़म का अर्थ भाषा के लिए लगा लिया, जबकि वह वंदना के तारतम्य का संकेत है। पहले भाषा की तब आचार्य की। यद्यपि वंशीधर ने प्रथम का अर्थ आद्य भाषा किया, फिर भी निसंकोच से अवहट्ट भाषा ही कहा। अवहट्ट को आद्य भाषा क्यों कहा जाए, इसका कोई स्पष्टीकरण वंशीधर ने प्रस्तुत नहीं किया। संभवतः आद्य भाषा से उनका तात्पर्य नव्य आर्य भाषाओं का आरंभिक भाषा यानी उद्भावक भाषा से था। अवहट्ट का कोई संकेत लेखक ने नहीं दिया था, किंतु 17वीं शती के टीकाकार ने इस भाषा का अवहट्ट नाम दिया। यही नहीं, एक दूसरे स्थान पर वंशीधर ने इस भाषा के व्याकरणिक ढांचे की मीमांसा करते हुए लिखा है, इन भाषा यानी अवहट्ट में पूर्व निपाद आदि नियमों का अभाव है, इसलिए पद व्याख्या करते समय गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्वयादि की यथोचित योजना कर लेनी चाहिए। अवहट्ट भाषायाम पूर्व निपाद आदि नियमाम अभावत यथोचित योजनाम कार्या सर्वत्री बोध्यम प्राकृतंगलम पृष्ठ संख्या 418। वंशीधर ने इस वाक्य द्वारा अवहट्ट में निर्विभक्ति प्रयोगों की बहुलता देखकर यह चेतावनी दी है। निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग सौशर्य भ्रंश यहाँ तक कि हेमचंद के दोहों में भी कम से कम हुआ है, किंतु नव्य आर्य भाषाओं में इस प्रकार की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल दिखाई पड़ती है। संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के वाक्य विन्यास की सभी भौतिक प्रयोगावली विशिष्टता नई भाषाओं में समाप्त हो गई। इस अनियमितता के कारण परसर्गों की सृष्टि करनी पड़ी और वाक्य गठन में स्थान वैशिष्ट यानी कर्ता कर्म क्रिया के निश्चित तरकीब को स्वीकार करना पड़ा। यह प्रवृत्ति जैसा वंशीधर के संकेत से स्पष्ट है अवहट्ट भाषा से वर्तमान थी। इस प्रकार वंशीधर का अवहट्ट भाषा शास्त्रीय विवेचन के आधार पर अपभ्रंश के बाद की स्थिति का संकेत करता है। इस स्थान पर एक और पहले से विचार हो सकता है, अवहट्ट जैसा कि अपभ्रंश शब्द का विकसित रूप है क्यों 12वीं शती के बाद ही प्रयुक्त हुआ। पहले के लेखक आचार्य इस भाषा को अपभ्रंश कहते थे। अपभ्रंश में निहित च्युति को संलक्ष करके इस भाषा के प्रेमी लेखक इसे देशी भाषा लोकभाषा आदि नामों से अभिहित करते थे। स्वयंभू पुष्पदंत जैसे गौरवास्पद कवि इस भाषा को देशी कहना ही पसंद करते थे। उन्होंने अपभ्रंश नाम का कम से कम प्रयोग किया। संस्कृत अलंकारिकों ने तिरस्कार के से यह नाम फामर्जन की बोली को दिया, इसी का वे प्रयोग भी करते रहे। अपभ्रंश उनका ही दिया नाम था। बाद में यह अपभ्रंश अवहट्ट हो गया। प्रयोग में आते आते इनके भीतर निहित तिरस्कार की भावना समाप्त हो गई। अपभ्रंश विकसित होकर राष्ट्रव्यापी हुआ और उसका निरंतर विकासमान रूप बाद में अवहट्ट कहा जाने लगा। पूर्ववर्ती अपभ्रंश प्राकृत प्रभाव से विजड़ित एक रूढ़ भाषा थी। परवर्ती कवियों अद्दहमाण विद्यापति या प्राकृत पैंगलम के लेखक ने इसे देशीर वयाना के स्तर पर उतार कर लोक प्रवाह से अभिषिक्त करके नया रूप दे दिया। इस नए और विकसित रूप की भाषा की इन कवियों ने अपभ्रंश नहीं अवहट्ठ यानी एक सीढ़ी और बात की भाषा कहा। विद्यापति ने देशील वयाना की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उसी तरह के अवहट्ठ में कृति लता काव्य लिखूंगा। देशील वयाना सवजन मिठा त तैसन जम्पाऊ अवहट्ठा। इन तैसन को लेकर विद्वानों ने बहुत वर्त की माता पच्चा की। वस्तुतः विद्यापति देशील वयाना से अपनी भाषा मैथिली को संबोधित करते हैं, जबकि अवहट्ठ तत्कालीन सर्वमान्य साहित्यिक भाषा थी। वैसे विद्यापति की पदावली की भाषा को भी लोचन ने अपनी राग तरंगड़ी में मिथिला अपभ्रंश ही कहा है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग बहुत ही ढीले ढाले अर्थ में होता था। कुछ लोग इसी मिथिला अपभ्रंश शब्द को लेकर कीर्तिरेता की भाषा को भी मिथिला अपभ्रंश भी कहने लगे, पर लोचन कवि ने तो अपने मिथिला अपभ्रंश का साफ अर्थ भी लिख दिया है, देश्यामपि स्वदेशीयत्वाम प्रथमं मैथिलाभ्रंश भाषायाम श्री विद्यापते निबद्धस्ताम मैथिली गीत गतयम प्रदर्शन्ते। लोचन कवि स्पष्टतः विद्यापति गीतों की मैथिली भाषा को मिथिलाभ्रंश कहते हैं। कीर्तिलता की भाषा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अपभ्रंश का अर्थ उनके लिए देशी भाषा था, इसलिए उन्होंने देश्याम लिखा। पदावली की भाषा मैथिली है इसमें शक नहीं, पर उस पर अवहट्ट का भी कम प्रभाव नहीं। इसी कारण विभक्तियों और परसर्गों में तथा कुछ एक क्रिया रूपों में पश्चिमी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत की भाषा स्तुति का पर्यवेक्षण करने पर कुल 6 प्रकार की भाषाएं प्रचलित दिखाई पड़ती हैं। 14वीं शताब्दी में प्रचलित भाषाओं के विश्लेषण के आधार पर तत्कालीन उत्तर भारत की भाषा स्थिति का कुछ अनुमान नीचे की सूची से हो सकता है। पहला, संस्कृत प्राकृत। दोनों साहित्यिक भाषाएं जनता से कटी हुई, थोड़े से लोगों के बुद्धि विलास की वस्तु रह गई थी। फिर भी इनमें काव्य प्रणयन हो रहा था। श्रीहर्ष का नैषध तत्कालीन संस्कृत और समराइच कहा आदि प्राकृत भाषा के आदर्श ग्रंथ हैं। दूसरा, शौर्षेय अपभ्रंश का साहित्यिक रूप। जैन लेखकों की रूढ़ अपभ्रंश आदर्श शीलभद्रसूरी लक्षण आदि की रचनाएं इस श्रेणी में आती हैं। तीसरा, शौर्षेय का परवर्ती अवहट्ठ रूप। सिद्धों के दोहे कीर्तिलता अद्धमाण के संदेश के दोहे इस भाषा के आदर्श हैं। चौथा, अवहट्ठ और राजस्थानी के किंचित मिश्रण से उत्पन्न पिंगल प्राकृत पैंगलम प्राचीन रासो काव्य रणमल छंद आदि इस भाषा के आदर्श चारण शैली की भाषा। पांचवा, प्राचीन पश्चिमी प्राचीन राजस्थानी या गुजराती मिश्रित अभ्रंश जिसमें शौर्षेय का कम प्रभाव न था यह भी साहित्यिक भाषा हो गई थी। देसी तोरी ने इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। छठा, देश अभ्रंशों से विकसित जनभाषाएं प्रारंभिक मैथिली राजस्थानी गुजराती आदि। विद्यापति की पदावली की भाषा मूलतः नंबर 6 के अंतर्गत सम्मिलित मैथिली है इसमें शक नहीं, पर नंबर 3 और 4 का प्रभाव भी कम नहीं है। अवहट्ट भाषा में विद्यापति ने कीर्तिलता कीर्तिपता का और कुछ फुटकल रचनाएं लिखी। कीर्तिलता का सबसे पहला संस्करण बंगला में महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के संपादन में वंगीय सन 1331 ईस्वी अर्थात ईस्वी 1924 में प्रकाशित हुआ। ईस्वी सन 1922 में शास्त्री जी नेपाल गए और वहीं से कीर्तिलता की प्रतिलिपि ले आए। कीर्तिलता का पहला संस्करण होने के कारण इसमें पाठ और अर्थ की कई भूलें हैं, किंतु शास्त्री जी का यह कार्य सर्वथा प्रशंसनीय और गौरवास्पद है इसमें शक नहीं। ईस्वी सन 1929 में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संपादन में कीर्तिलता का हिंदी संस्करण काशी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ। यह संस्करण शास्त्री जी के वंगीय संस्करण के बाद प्रकाशित हुआ और सक्सेना जी के नाम शास्त्री जी की अपेक्षा सामग्री भी अधिक थी, किंतु अभाग्यवश यह संस्करण बंगला संस्करण से अच्छा और कम तृप्तिपूर्ण न हो सका। 1955 ईस्वी में इन पंक्तियों के लेखक ने कीर्तिलता का नया संशोधित पाठ उसकी भाषा के विस्तृत विश्लेषण और पाठबोध के साथ साहित्य भवन लिमिटेड प्रयाग से प्रकाशित कराया। कीर्तिलता के विषय में इस संस्करण में विस्तार से विचार किया गया, इसलिए उसे यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं मालूम होता। कीर्तिपता का पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हो सकी है। बहुत दिनों तक इस पुस्तक की प्राप्ति में ही आशंका बनी रही। इधर पटना कॉलेज में उसकी प्रति की फोटो कापी की आने की सूचना मिली है, किंतु जब तक यह संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो जाती इसके काव्यगत मूल्यांकन संभव न हो सकेगा। इन दो बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त विद्यापति ने 2-3 फुटकल रचनाएं भी अवहट्ट में लिखी, किंतु इनका साहित्यिक मूल्य नहीं के बराबर है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार संपादित विद्यापति में पद संख्या 8 और 9 के अंतर्गत 2 रचनाएं दी हुई। ऐसी दशा में यहाँ केवल कीर्तिलता का ही मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा रहा है। कीर्तिलता की भाषा को देखते हुए सहसा किसी पाठक को विश्वास नहीं होता कि कीर्तिलता को भी गीतकार विद्यापति ने ही लिखा है, किंतु अवहट्ठ हठेली शब्द योजना के भीतर प्रवेश करने पर किसी भी सहृदय को गीतों के गायक को पहचान सकना कठिन न होगा। जीवन की समष्टि और समग्रता कल्पना के एक क्षण की तुलना में कठोर क्रूर होती रही है और कवि के लिए तो यह सहसा एक चुनौती भी है कि उसकी विधायिका शक्ति इन तमाम क्रूरता कठोरता को कैसे अभिव्यक्त दे पाती है। इस दृष्टि से कीर्तिलता के पाठक को एक नए तरह के रस का आस्वाद मिलेगा। इसमें जीवन की तिक्तता कसैलापन और मिठास सभी कुछ है। विद्यापति का भाव कवि कीर्तिलता में जैसे जीवन के वास्तविक धरातल पर उतर आया है और यथार्थ का यह धरातल एक बार के लिए कवि के मन में भी आशंका का बीजारोपण कर ही देता है। फिर भी उनके मन को विश्वास है कि चाहे असूया वृत्ति के दुर्जन इस काव्य की निंदा ही क्यों न करें, काव्य कला के मर्मी इसकी अवश्य प्रशंसा करेंगे। का पर बोधयो कमण मड़ावयो किम नीरस मने रस लाय लावण्यो आई सुरसा हो यस मजुभाषा जो बुझे सो करहिं प्रशंसा। महुअर बुझे कुसुम रस कब कलाऊ छैल सज्जन पर उ आर मन दुज्जन नार मैल। शंकर के मस्तिष्क पर शोभित द्वितीया के चंद्रमा की तरह विद्यापति की यह कृति प्रशंसित होगी ऐसा कवि का विश्वास है। इसमें संदेह नहीं कि उनका यह विश्वास आधारहीन नहीं है। कीर्तिलता का काव्य रूप। मध्यकाल के साहित्य में वृत्तांत कथन की तीन प्रमुख शैलियां दिखाई पड़ती हैं। परवर्ती संस्कृत साहित्य के चरित्र काव्य या ऐतिहासिक काव्यों की शैली, दूसरी कथा आख्यायिकाओं की शैली और तीसरी प्रेमाख्यानकों की मसनवी शैली जो पूर्णतः विदेशी प्रभाव से विकसित हुई थी। संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों की शैली भी बहुत प्राचीन नहीं मालूम होती। विद्वानों की धारणा है कि 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास मुसलमानों के संपर्क से इस प्रकार की शैली का उदय हुआ। यह सत्य है कि पिछले खेबे में जिस प्रकार के ऐतिहासिक काव्य लिखे गए वैसे काव्य पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं मिलते, किंतु इतिहास को कल्पना और अतिशयोक्ति के आवरण में ही सही काव्य का उपकरण अवश्य समझा जाता था। भारतीय कवि इतिहास की घटनाओं को भी अति मानवीय परिवहन दे देते थे, जिससे यह निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि इसमें कितना अंश इतिहास का है और कितना कल्पना का। पंडित हरि प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया, बराबर यह ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। युद्ध में दैवीय शक्ति का आरोप कर पौराणिक बना दिया गया है, जैसे रामकृष्ण बुद्ध आदि और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजंधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है, जैसे उदयन विक्रमादित्य और हाल। वस्तुतः ऐतिहासिक काव्यों का उदय सामंतवाद की देन है। भारत में भी ईसा की दूसरी शताब्दी से ही राज स्तुति पर रचनाओं का निर्माण शुरू हो गया था। मैक्स मूलर ने ईसा के पहली से तीसरी शती तक के काल को अंधेरा युग कहा है, क्योंकि उनको इन शताब्दियों में अच्छे काम का अभाव दिखाई पड़ा। मैक्स मूलर के मत के विरोध में डॉक्टर ब्यूलर ने कहा कि इस काल में अत्यंत सुंदर स्तुति काव्यों की रचना होती थी। अभाग्यवश हमें कोई वैसा काव्य नहीं मिल सका, किंतु शक क्षत्रप रुद्रदामन का गिरनार का शिलालेख ईस्वी 150, कवीवर हरिशेण की लिखी प्रशस्ति समुद्रगुप्त 350 ईस्वी, इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है, तथा ईस्वी सन 473 ईस्वी में लिखी वत्स भट्टी की मंदसूर की प्रशस्ति इस प्रकार की स्तुतिपरक ऐतिहासिक रचनाओं की ओर संकेत करती है। कवि वत्स भट्टी ने 40 श्लोकों में जो मनोरम प्रस्तुति प्रशस्ति की है वह महत्वपूर्ण लघु काव्य है, जिसमें भाव भाषा सभी कुछ उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर भी इतना तो सत्य है कि बाणभट्ट के हर्षचरित के पहले इस प्रकार के स्तुति परक ऐतिहासिक काव्यों का कोई संधान नहीं मिलता। हर्षचरित को भी वास्तविक अर्थ में काव्य नहीं कह सकते, वह आख्यायिका है। संस्कृत का सबसे पहला ऐतिहासिक काव्य पद्मगुप्त परिमल का लिखा नवसा सांगचरित 1005 ईस्वी है, जिसमें धाना नरेश भोजराज के पिता सिंधुराज और शशिप्रभा नामक राजकुमारी के विवाह की कथा वर्णित है। चालुक्यवंशी नरेंद्र विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1127 ईस्वी के सभा कवि बिल्लड़ ने विक्रमांक देवचरित में अपने आश्रयदाता के चरित्र तथा उसके वंश का वर्णन किया है। इसके बाद तो ऐतिहासिक काव्यों की एक परंपरा ही चल पड़ी और चरित्र विजय विलास आदि नामों से कई ऐतिहासिक काव्य लिखे गए, जिनमें अल्हड़ की राज तरंगी 1050 ईस्वी, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित 1089 से 1173 ईस्वी, वास्तुपाल के सभा कवि सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी 1179 से 1262, अरिसिंह का सुकृत संकीर्तन वास्तुपाल आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 200 वर्ष पीछे चंद्र सूर्य ने 14 सदी में हम्मीर महाकाव्य लिखा था। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में अकबर के सामंत राजा सुरजन की प्रशंसा में गौड़देशी कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की। इसी तरह विजयनगर के नरेशों की प्रशंसा में राजनाथ डिंडिम ने अच्युत रामाभ्युदय तथा कंपराय की रानी गंगा देवी ने अपने पति की प्रशंसा में मधुरा विजय का प्रणयन किया। जयानक का लिखा पृथ्वीराज विजय भी एक अधूरी प्रति मिली है, जो ओझा जी द्वारा संपादित होकर अजमेर में प्रकाशित हुई। संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों की यह परंपरा थोड़ी बहुत परिवर्तित रूप में प्राकृत और अपभ्रंश में भी दिखाई पड़ती है। यशो वर्मा के सभा पंडित वाक्पति राज का गौण बहु अपनी शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश के रासो ग्रंथ भी एक प्रकार के ऐतिहासिक काव्य हैं, यद्यपि इनमें कल्पना का रंग ज्यादा गाढ़ा है। कीर्तिलता भी एक ऐतिहासिक काव्य है। कवि विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की कीर्ति को प्रोज्वल करने के लिए इस काव्य की रचना की। यह एक चरित काव्य है। राय रचित रसालु यहूं उड़ान राखई गोई, कवन वंश को राय सो कीर्ति सिंह को होई। भृंगी के इस प्रश्न पर भृंग ने कीर्ति सिंह के चरित्र का उद्घाटन किया। कीर्तिलता एक छोटी सी रचना है, इसलिए इसमें चरित काव्यों की तमाम प्रवृत्तियों का मिलना कठिन है। मध्यकालीन चरित काव्यों के कथानक रूढ़ियों का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार की कथानक रूढ़ियों में एकाध ही कीर्तिलता में मिलती है। उदाहरण के लिए कीर्तिलता संवाद पद्धति पर लिखी गई है। भृंग शंका करती है, भृंग उसका उत्तर देता है। रास्व के शुक शुकी संवाद की तरह यह भी संवाद है, किंतु यहाँ भृंग भृंगी वक्ता श्रोता के रूप में ही बने रहते हैं। नायक की आपद विपद में सहायता करने के लिए दौड़ते रहें। इस प्रकार यद्यपि विद्यापति ने बहुत कुछ प्रचलित रूढ़ी का सहारा लिया है, किंतु उसे खींचकर अस्वाभाविकता की सीमा तक ले जाना स्वीकार नहीं किया। मध्यकाल के तमाम चरित काव्यों में कीर्तिलता का स्थान इसलिए विशिष्ट है कि लेखक ने कल्पना और अतिरंजना का कम से कम सहारा लिया है। ऐतिहासिक घटनाओं को यथातथ्यता के प्रति जितना सतर्क विद्यापति दिखाई पड़ते हैं, उतना उस काल का दूसरा कोई कवि नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने नायक की युद्धवीरता आदि के वर्णन में अतिरंजना का सहारा लिया ही नहीं, और लिया और खूब लिया है, किंतु कथा के नियोग में अस्वाभाविक घटनाओं का कहीं भी समावेश नहीं किया गया है। केवल रूढ़ियों के निर्वाह के लिए या पाठकों को कथा रस का आनंद देने के लिए अवान्तर घटनाओं, प्रेम व्यापार, भूत परियों आदि को इसमें कहीं भी स्थान नहीं है। चरित काव्यों की तरह इसमें भी आरंभ में सज्जन प्रशंसा और खल निंदा के रूप में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सुवर्ण प्रशंसई कब मजदुज्जन बोलई मंद, अवसव विसहर विस वमई अमीय विमुक्कई चंद। सज्जन पुरुष चंद्रमा की तरह है, अमृत वर्षण करते हैं, किंतु खल तो विषधर है। उनका काम है विश्ववन करना है, किंतु बालचंद विद्यावय भाषा दुह नहीं लग गई दुर्जन हासा, ऊपर मेसर इरसिर सोहई ईणिचय नार मन मोहई। कवि को अपनी प्रतिभा पर अटूट विश्वास है। वह जानता है कि द्वितीया के निष्कलंक चंद्रमा पर दुर्जन का उपहास नहीं लग सकता, वह तो शंकर के मस्तक पर सुशोभित होगा ही। खल निंदा और दुर्जन प्रशंसा आदि की परपाटी पूर्ववर्ती काव्यों में तो है ही, तुलसी के मानस आदि पूर्ववर्ती काव्यों में भी दिखाई देती है। चरित काव्यों में मुख्य रूप से आखेट, प्रेम और युद्ध का वर्णन होता है। कीर्तिलता में अधिकांश युद्ध या युद्ध के लिए उद्योग का ही वर्णन हुआ है। द्विवेदी जी का अनुमान है कि संभवतः कीर्ति पताका में प्रेम आखेट आदि का वर्णन हुआ है। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यद्यपि पुस्तक में कुछ प्रारंभिक पन्ने जो प्राप्त हैं इसी बात की ओर संकेत करते हैं। उनमें युद्ध की भूमिका नहीं, शांति की भूमिका दिखाई पड़ती है। मध्यकालीन साहित्य में वृत्तांत कथन की दूसरी शैली कहानी या आख्यायिका की है। कीर्तिलता को लेखक ने कहानी कहा है। पुरुष कहानी हयो कहो यशु पत्थावे पुन्न, सुख सुभवण शुभवण देवहा जाय सपुन्न। मैं उस महापुरुष की कहानी कहना चाहता हूँ जिसके प्रभाव से पूर्ण होता है, सुख सुभोजन शुभवचन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेखक ने इसे कहानी ही नहीं कहा है, बल्कि आख्यानों के अंत में दिए महात्मा की तरह इस कहानी के सुनने के फायदे भी बताए। आजकल कथा कहानी आख्यायिका का प्रयोग हम सादृश्य सार्थक शब्दों की तरह करते हैं, किंतु मध्यकाल में इसके अर्थ में अंतर था। कथा का अर्थ प्रयोग प्राचीन साहित्य में अलंकृत काव्य रूप के लिए भी होता था, जैसे कोई भी कहानी या सरस वृत्तांत कथा है, किंतु इस शब्द के अंदर एक खास प्रकार के काव्य का भी अर्थ नियोजित मालूम होता है। काव्यालंकार के रचयिता भामा ने सरस गद्य में लिखी हुई कहानी को आख्यायिका कहा है। भामा ने यह भी कहा है कि आख्यायिका दो प्रकार के होते हैं, आख्यायिका और कथा। आख्यायिका गद्य में होती है और इसे नायक स्वयं कहता था, जबकि कथा को कोई भी कह सकता था। आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त होती थी और इसमें वक्त्र और अपरवक्त्र छंद होते थे, किंतु कथा में इस तरह का कोई नियम न था। दंडी ने इसका अंतर इस प्रकार समझाया है। अपाद पाद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा इति तस्य प्रभेदो द्वौ तयोराख्यायिका किल नायकेन नैव वाच्यान्या नायकेन तरेण वा सगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र भूतार्धशंसिना अपित्वनियमो दृष्टस्त्रस्तत्राप्य नैरुदीरणात् वक्त्रं चारपरवक्त्रं च सूक्ष्मवासं चाभिभेदकं च माख्यायिका भाष्येत् प्रसंगेन कथास्वपि। काव्यादर्श। संस्कृत के आचार्य की दृष्टि से आख्यायिका और कथा गद्य में लिखी जानी चाहिए, किंतु अभ्रंश या प्राकृत में इस तरह का कोई बंधन न था। इसी से संस्कृतेतर इन भाषाओं में कथाएं प्रायः पद्य में लिखी ही मिलती हैं। इन कथाओं को चरित्र काव्य भी कहा गया है। अभ्रंश भाषा के चरित्र काव्य में गद्य का एक प्रकार से प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुछ ग्रंथ अवश्य इसके अपवाद भी हैं। संभव है कि संस्कृत की पद्धति पर कुछ लेखकों ने गद्य पद्य दोनों में अर्थात चंपू काव्य में कथाएं की हैं। जो हो, प्रचलित चरित्र काव्यों में कृतलता इस अर्थ में थोड़ी भिन्न है और इसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। और कथा काव्य की तरह विद्यापति ने भी इस रचना के गद्य खंडों को काफी सरस और अलंकृत बनाने का प्रयत्न किया है। तथा काव्यों में राज्य लाभ कन्याहरण गांधर्व विवाहों की प्रधानता रहती है, किंतु कीर्तिलता में केवल राज्य लाभ का ही वृत्तांत दिया गया है। इस तरह कीर्तिलता में कथा काव्य के कोई लक्षण नहीं भी मिलते। इसी आधार पर द्विवेदी जी का कहना है कि विद्यापति ने जानबूझकर कीर्तिलता को कथा न कहकर कहानी कहा है। इस प्रकार हमने देखा कि एक ओर कीर्तिलता मध्यकालीन चरित काव्यों या ऐतिहासिक किंवा अर्ध ऐतिहासिक काव्यों की परंपरा में गिनी जाती है, दूसरी ओर इनमें कथा का भी रूप न्यूनाधिक रूप में पाया जाता है। वस्तुतः कीर्तिलता में मध्यकालीन काव्यों की कई विशेषताएं नगर वर्णन युद्ध वर्णन आदि के प्रसंगों में दिखाई पड़ता है। कवि ने समयानुकूल इसमें वर्णन की दृष्टि से छंदों का भी उचित प्रयोग किया है। साथ ही अभ्रंश काव्य की रूढ़ियाँ कवि समय आदि इनमें सहज रूप से प्राप्त होते हैं। कीर्तिलता काव्य जैसा कहा गया है, कीर्ति सिंह के जीवन के एक हिस्से यानी युद्ध और राजलाभ के प्रसंगों को लेकर लिखा गया है। लक्ष्मण संवत 252 में राजलोभी मलिक असलान ने तिरहुत के राजा गणेश्वर का धोखे में वध कर दिया। राजा के वध से तिरहुत की हालत अत्यंत खराब हो गई, चारों ओर अराजकता फैल गई। कवि ने इस अवस्था का बहुत ही यथार्थ चित्रण उपस्थित किया है। ठाकुर ठग भैल गेल चोरे चप्पर घर लिज्झिय दास गुसायन गहिय धम्म गए अंध निमिज्झ खले सज्जन परभिव कोई नहीं हो ये विचारक जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक अक्षर रस बुज्झ निहार नहीं कई कुल भमि बिखर भऊ तिरहुत तिरोहित सब गुणेरा गणेश जबे सग गौ। राजा के वध के बाद विश्वासघाती असलान को परिताप हुआ। उसने गणेश्वर का राज्य उनके पुत्र को दे देना चाहा, किंतु पिता के हत्यारे और अपने शत्रु द्वारा समर्पित राज्य को कीर्ति सिंह ने स्वीकार नहीं किया। वे अपने भाई वीर सिंह के साथ जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह के पास चले। बड़ी कठिनाई से दोनों भाई जौनपुर पहुंचे। जौनपुर क्या था, लक्ष्मी का विश्राम स्थान और आँखों के लिए अत्यंत प्रिय था। कवि विद्यापति ने जौनपुर का बड़ा ही भव्य वर्णन किया है। बाग बगीचे मकान रास्ते रहट बाट पुष्करणी संकरण सोपान और हजारों श्वेत ध्वजों से मंडित स्वर्ण कलश वाले शिवालयों के विशद वर्णन से कवि ने नगर को साकार रूप दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने नगर की बारीक बारीक बातों का ब्यौरेवार वर्णन उपस्थित किया है। गलियों में कर्पूर कुमकुम सौगंधिक चामर कज्जल आदि बेचने वालों के साथ ही काश्य के व्यापारियों की बीती जो बर्तन गढ़ने की क्रिकार ध्वनि गूंजती रहती थी, उसके साथ और भी मछहटा पनहटा आदि बाजार के हिस्सों का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। नगर के चौड़े चौड़े रास्तों का जन समर्द लगता था जैसे मर्यादा छोड़कर समुद्र उमड़ पड़ा हो। नगर का वर्णन विद्यापति की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। तत्पश्चात विद्यापति ने मुसलमानों के रहन सहन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। उनकी आंखों के सामने से कोई भी जीव छूट कर बच नहीं सके। विद्यापति के मन में इनके प्रति सहज विरक्ति है। इनके वर्णन में भी कहीं कहीं उनके मन का क्षोभ व्यक्त हो जाता है। खास तौर से उनकी गंदी आदतें, शराब, कबाब, प्याज का उन्होंने थोड़ा घृणायुक्त वर्णन किया है। विद्यापति के शब्दों में एक राज कर्मचारी तुर्क का स्वरूप देखिए। अति गह सुमर सुदाये खायले भांग का गुंडा, बिनु कारण ही कुहाए बैन तातल तम कुंडा, तुरक तुषार ही चलल हाट भूमि हीडा चाहे, आड़ी दीच निहार दवली दाढ़ी थूक वाहद। अंतिम पंक्तियों में तुर्क की उन्होंने दुर्दशा ही कर दी। जो घोड़े पर सवार होकर बाजार में घूमकर हीडा कर या गोश्त मांगता है, क्रुद्ध दृष्टि से देख कर दौड़ता है तो उसके दाढ़ी से थूक बहने लगता है। इस प्रकार के क्रूर के शासनकाल में एक संस्कारी हिंदू के मन की ग्लानी का स्वरूप देखिए। धरी आनय वाभन बटुआ, मथा चढ़ावे गायिक चुडुआ, होट चाट जने ऊ तोर, ऊपर चढ़ावे चाह घोर, धोवा उधरिया रे मंदिरा साध, देवर भांग मसीद बाँध, गुरी गोबर पुरिल मही, पैरहु देना एक ठान नहीं, हिंदू ही गोठ ओ गिलिये हल तुरक देख होय भान, ऐसे हो जस पर ताय रस चिर अजीवत सुल्तान। बामन बटुक को पकड़ लाता है और उसके माथे पर गाय का शुरुआ रख देता है। चंदन का तिलक चाट जाता है, माथे पर घोड़ा चढ़ा देना चाहता है। धोए निवार धान से मदिरा बनाता है और देवालय तोड़कर मस्जिद खड़ी करता है। कब्रों और कसाइयों से धरती पट गई है, पैर देने की जगह कहीं नहीं। तुर्कों को देखने से लगता है कि हिंदुओं को पूरा पूरा चढ़ा जाएंगे, फिर भी जिस सुल्तान के प्रताप में ऐसा होता था वे चिरजीवी हों। जिस सुल्तान के पास विद्यापति के आश्रदाता कीर्ति सिंह सहायता मांगने गए थे, उसी सुल्तान के राज्य में यह सब कुछ होता था। लखन सेन ने भी तत्कालीन परिस्थिति का बड़ा मजेदार वर्णन किया है। भोदू महंत जे लागे काना, काज छाड़ या काजय जाना, कपटी लोग सब भे धर्माधि, छोट वैद्य नहीं चिन्ह व्याधि, कुंजर बांधे भूखन मरई, आदर सो पर से चरई, चंदन आन करील लियावा, आंब काट बबूर बोआवा, कोकिल हंस मजा रही मारे, बहुत जतन का गहे प्रतिपारे, सारी व पंख उबार चले चमतूर जंग संसार, लखन से निताह ने बसे काढ़ी जो खाह उधार। इब्राहिम का समय, लखन सेन, हरिश्चरित्र, विराट एवं पर्व अप्रकाशित। गोपेश्वर की मृत्यु हो जाने पर विद्यापति ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। लखन सेन भी अंत में अपना क्षोभ नहीं रोक पाता, कहता है कि सारे गाँव की पाखें उखाड़ते और घरों में मुर्गियां पालते हैं। इब्राहिम शाह इसके द्वार पर संसार भर के राजे प्रणिपात करते हैं और वर्षों दर्शन नहीं पाते। दोनों भाइयों पर कृपा करता है और अस्लान को पकड़ने की निशाना लेकर चलता है, किंतु कारणवश सेना को पूर्व के लिए चली थी पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। इस समय दोनों राजकुमारों की दशा का बहुत ही हृदय द्रावक चित्रण कवि उपस्थित करता है। संबर निरवल करिस तनु, अंबर भील पुराण, जवन स्वभाव निरुक्कण तो न सुमरु सुल्तान। विदेश में ऋण भी नहीं मिलता, मानधनी भीख भी कैसे मांग सकता है, राजा के घर जन्म हुआ, दीनता भरे वचन भी कैसे निकले। सेवी साम निशंक भय, दैव न पुरवयास, अह महत्तर किंकर गंडय गणीय उपास। मित्र सहायता नहीं करता, भूख कारण मृत्युओं ने साथ छोड़ दिया, घोड़ों को घास नहीं मिलती। इस तरह अत्यंत दुख की अवस्था में दिन बिताते रहे, किंतु एक दिन अचानक आशा फलवती हुई, सेना को तुरहित की ओर मुड़ने की आज्ञा हुई। कीर्ति सिंह के साथ ही विद्यापति कभी भी आनंद से गा उठे। फलियो साहस कम्बतरु सन्नगह फरमान, उह मितासु असक्य की जस प्रसन्न सुरतान। कीर्ति सिंह के साथ ही सेना चली। उस समय संसार भर में कोलाहल मच गया, सेना के घोड़ों पर दृष्टि डालिए। अरेक बाज तेज तेज साज साज आनिया, परक में ही जा सुनाम दीप दीप जानिया, विशाल कंद चारु बंद सत्युरुक सोहणा, तलप हाथ लाग जात सत्य सेण खोहणा, सुजत्य शुद्ध क्रोध क्रुद्ध तोरी धाव कंधरा, व शुद्ध दापे मार टापे चोरी जा वसुंधरा। इस तरह के दर्प से भरे घोड़े उस सेना में चले। राजधानी के पास दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हो गई, तलवारें बज उठी। कीर्ति सिंह की तलवार जिधर पड़ती उधर ही रुंड मुंड दिखाई पड़ते। अंतरिक्ष में अप्सराएं श्रम परिहार के लिए अंचल से व्यजन कर रही थी। स्वर्ग से परिजात सुमनों की वृष्टि हो रही थी। असालन पकड़ा गया किंतु कीर्ति सिंह ने उसे भागते देख जीवन दान दे दिया। इस तरह तिरहुत का राज्य पुनः सनात हुआ। जिस प्रकार विद्यापति के इस काव्य में यथार्थ एक नवीन सौंदर्य लेकर उपस्थित हुआ है, उन्होंने एक और जहाँ कीर्ति सिंह के वीरता भरे व्यक्तित्व का दर्प दर्शाया है, वही उनकी दुरावस्था का भी चित्रण किया है। यही नहीं, विद्यापति के इस कौशल के कारण कीर्ति सिंह निर्जंधरी कथाओं के नायकों से भिन्न कोटि के वास्तविक जीवंत पुरुष मालूम होते हैं। विद्यापति के ईश्वरीय चित्रण की मूर्तिमत्ता की ओर संकेत करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है कि नोटकामा, कवि की लेखनी चित्रकार की उस तुलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्य बनाता है, बल्कि उस शिल्पी की टांकी के समान है जो मूर्तियों की भित्ति गात्र में उभार देता है। हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊंचाई निचाई का पूरा पूरा अनुभव करते हैं। नोटकामा, इतना ही नहीं, विद्यापति की लेखनी में सरकार का वह जादू भी है कि इन मूर्तवर्ती चित्रों को सजीव कर देता है। हम वेश्या के नपुरों की चमक के साथ ही युद्ध भूमि के पटहस तूर्य की गगन भेद आवाज भी सुन पाते हैं। काव्य कौशल की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रीतिमान नहीं है। उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकारों में एक सुरुचि दिखाई पड़ती है। वेश्याओं के काले काले केश श्वेत पुष्प गुथे हुए हैं। कवि कहता है मानो मान्य लोगों के मुखचंद्र की चंद्रिका भी अधोगति होकर अंधकार हंस रहा हो। तन केश कुसुम बस जान मान्य जनक लजवा वलंति मुखचंद्र चंद्रिका करी अधोगति देख अंधकार हस नयनांचल संचारे भ्रूलता भंग जान कज्जल कल्लोल निविरी विच विवर्त बड़ी सकरी सफिर तरंग। कीर्तिलता के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए लेखक के पुस्तक कीर्तिलता और अवट्ट की भाषा देखी जा सकती है।